है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको बता दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत।
सुबोध मिश्रा एंड मायसेल्फ सरबजीत कौर।
धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7117 और 2371-7106। श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
जी धन्यवाद।
पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों इनॉग्रेट भारत इनोवेट्स इवेंट इन फ्रांस। मिस्टर मोदी कॉल्स इट एन इन्विटेशन टू को क्रिएट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्लोबल इनोवेशन विद इंडिया। In bullion market, gold and silver prices declined last week, and domestic investors to focus on macroeconomic data, geopolitical developments, and U.S. Federal Reserve's meeting for Q's next week.
Prime Minister Narendra Modi ne. नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। श्री मोदी ने इसे वैश्विक नवाचार के अगले अध्याय को भारत के साथ संयुक्त रूप से बनाने का आमंत्रण बताया। सराफा बाजार में पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों, वैश्विक घटनाओं और अमेरिका में फेडरल रिजर्व की बैठक से मिलने वाले संकेतों पर।
And before we go any further in the program, let's once again remind our dear listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And Subodh, let's right away move to the first big story of the day. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palais des Exposés in Nice, France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. Prime Minister said, Bharat Innovates is an invitation to the world to co-create the next chapter of global innovation with India. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, quantum technology, space technology, clean energy and biotechnology. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said, Bharat Innovates is emerging as a bridge between India's talent and European capital, creating new opportunities for young innovators to connect with global expertise.
आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स। आप सबको 100-125 स्टार्टअप दिख रहे हैं लेकिन भारत में ऐसे 200,000 से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
Addressing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating, but who will innovate with India. He highlighted India's vast pool of engineering talent and lauded countries' achievements such as the Chandrayaan mission as examples of India's technological excellence.
Chale aur kuch callers intezar kar rahe hain.
Ji.
Bihar se Pinku Rai hamare saath hain. Swagat hai aapka, sawal puchhein.
नमस्ते सर।
नमस्ते जी, सवाल पूछिए।
सर मेरा दो सवाल है। मेरा एक साल और SBI बैंक में गए थे, हम बोले थे MPS अकाउंट खुलवाना है पेंशन के लिए, तो सर जी वो बोलता है नहीं होगा। और एक दूसरा सवाल है, मैं SIP करना चाहता हूँ हर मंथली, क्या कहता है ये म्यूचुअल फंड में, वो बोलता है 2000 से कम नहीं होगा। सर इसके लिए मेरा सुझाव चाहिए।
पिंकू जी, जो आपका दूसरा सवाल है मैं वो पहले लेना चाहूँगा। आप बता रहे कि आप SIP करना चाहते हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि 2000 से कम नहीं होगा। तो देखिए, आम तौर पे ऐसा नहीं होता है। जो म्यूचुअल फंड्स है, जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, वो जनरली आपके 500 रुपये, बल्कि कुछ स्कीम्स तो 100 रुपये महीने की भी SIP एक्सेप्ट करती है। यहाँ पे मेरे को एक संभावना ऐसी लग रही है कि वो आपको म्यूचुअल फंड नहीं, हो सकता है वो आपको कोई और प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो आमतौर पे बैंक्स में जब भी ऐसा होता है, वो एक यूलिप ज़्यादातर बेच देते हैं। यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये एक इंश्योरेंस स्कीम और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का मिक्सचर होता है, एक हाइब्रिड प्रोडक्ट होता है। और आमतौर पे ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता है। इसमें होता है क्या कि आपको ना ही प्रॉपर इंश्योरेंस कवर मिल पाता है, और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ही एक एक्सपेंसिव कॉस्ट पर मिलता है। तो ये पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप उनसे पूछिए कि आप उनसे सीधा ये चीज़ पूछिए कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसमें आपको इंश्योरेंस कवर भी साथ में मिल रहा है क्या। अगर वो कहते हैं कि हाँ जी इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं है, ये एक यूलिप है। बाकी इसको एक्सेस करने के लिए आपके पास एक जो अच्छा तरीका है, आजकल बहुत सारे फिनटेक ऐप्स आ गई है, मोबाइल पर ऐप्स आ गई है, और हमारे पास MF सेंट्रल है जो कि दोनों RTAs के द्वारा मिलकर बनाए गए SEBI के डायरेक्टिव पे। आप डायरेक्टली वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं तो किसी AMC की वेबसाइट पे जाके भी डायरेक्टली कर सकते हैं।
जी, अगले कॉलर हैं मुंबई से, रत्नाकर जी, सवाल पूछें।
हेलो, गुड इवनिंग मैडम।
जी गुड इवनिंग।
मेरे पास ELSS के दो फंड है, महिंद्रा मैनुलाइट ELSS टैक्स सेवर और मेरा ही एसेट्स ELSS टैक्स सेवर, तो वो रिडेम्पशन करके कैश लेना अच्छा रहेगा क्या? और दूसरा सवाल है कि कोटक का एक फंड है मेरे पास, डेढ़ साल से पड़ा है, कोटक निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, लेकिन उसमें जितना चाहिए उतना ग्रो नहीं दिख रहा है। तो ऐसे हालत में अभी उसका NAV कुछ 14.30 है, तो ऐसे हालत में ये तीन फंड के बारे में आप कृपया बोलिए। थैंक यू।
जी, सबसे पहले जो आपके ELSS फंड्स हैं, मैं देख रहा हूँ जैसे कि जो महिंद्रा मैनुलाइट फंड है वो एक एवरेज फंड है, ना ही बहुत अच्छा फंड है और ना ही बिलो एवरेज, मैं कहूँगा एक अच्छा ठीक ठाक ELSS टैक्स सेवर फंड है। और वहीं मेरा टैक्स सेवर का भी जो आपका फंड है वो भी एक अच्छा फंड है। तो देखिए, जो एक ELSS फंड है केवल इसलिए कि उसका लॉक इन पीरियड ख़त्म हो गया है, 3 साल हो गए, उन्होंने अभी तक आपको जो भी है ठीक ठाक रिटर्न दे दिए, इस वजह से वहाँ से विड्रॉ करना, अपने पैसे रिडीम करना ठीक नहीं रहेगा। अगर अनलेस एंड अनटिल अभी उन पैसों की आपको ज़रूरत है या कोई ऐसा गोल है जहाँ पे आपने जिसके लिए सोचा था कि वो पैसे यूज़ करेंगे, तो देखिए जो एक ELSS फंड होता है वो आपके पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप फंड की तरह है। ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों टाइप के कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश करता है और एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा चुनाव है। तो सबसे पहले तो कि क्या आपको वहाँ से पैसे रिडीम करने चाहिए? देखिए, अगर अभी आपको पैसे कहीं यूज़ नहीं करने तो रिडीम मत करिए, उसको इन्वेस्टेड रहने दीजिए। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर आप उसको रिडीम कर लेंगे तो आप उन पैसों का बहुत बड़ा रिस्क रहेगा कि इधर उधर कंज्यूम हो सकते हैं, तो उनको रिडीम ना करें और अपने असेट एलोकेशन के हिसाब से चले। जो आपने एक तीसरा फंड बताया था, एक इंडेक्स फंड, मोमेंटम इंडेक्स फंड, पिछले 1.5 साल से आप बता रहे हो उसमें आप निवेश थे। देखिए, अभी फिलहाल कुछ समय में मार्केट्स ने वैसे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, और जो ये आप फंड बता रहे हैं ये एक प्लेन वनीला इंडेक्स फंड नहीं है, ये एक इंडेक्स फंड है जिसमें कुछ तरीके की स्ट्रैटेजीज लगी हुई है, एक मोमेंटम लगा हुआ है। तो इस तरह के फंड्स ने जब मार्केट गिराया तो एक आम इंडेक्स फंड से थोड़ा और ज़्यादा गिरा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, बट वहीं पे मैं कहूँगा कि 1.5 साल एक इक्विटी फंड के लिए बहुत ही थोड़ा समय है, आपको थोड़ा और समय देना चाहिए इस फंड को। कम से कम 3 से 4 साल का फंड एक इक्विटी फंड के लिए बिल्कुल ही मिनिमम है, आमतौर पे 5 साल से नीचे नहीं जाना चाहिए वहीं पे। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो पैसा आपका इस पर्टिकुलर फंड में जा रहा है वो एक मेजर हिस्सा नहीं है आपकी रिकरिंग इन्वेस्टमेंट्स का। हम इस तरीके के जो स्ट्रैटेजिक इंडेक्स फंड्स होते हैं इसमें आमतौर पर 5 से 10% ही अपने पोर्टफोलियो का पैसा निवेश करें।
जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से विशाल, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
ये मार्केट मंत्रा जी, मेरे को खाली एक ही सवाल पूछना है, जैसे जो अमेरिका और ईरान के बीच में आज डील होने वाली थी वो पोस्टपोन कर दी गई है या होना बाकी है, अभी इसका रिजल्ट आना बाकी है?
इसके लिए आप आकाशवाणी से दूसरे समाचार बुलेटिन्स सुनते रहिए और उसमें आपको ताज़ा जानकारियां मिलती रहेंगी, क्योंकि इसमें पल पल खबरें बदल रही हैं। वैसे अभी तक खबर यह है, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि समझौता हो जाएगा, लेकिन ईरान की तरफ से कोई पुष्टि नहीं है।
लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर अगेन फ्रॉम दिल्ली। वरुण जी सवाल पूछे।
गुड इवनिंग
जी। गुड इवनिंग
मैम, मुझे पूछना है स्मॉल कैप में जो एम वैल्यू, जैसे मेरा पास डीएसपी का स्मॉल कैप है और मैं मेरा और एक मतलब वो अमाउंट काफी ज्यादा हो गया स्मॉल कैप में उसी फंड में, तो अब मैं और एक दूसरा फंड साथ में जोड़ना चाहता हूँ, तो मैम क्या मुझे इसमें फंड जैसे डीएसपी तकरीबन 18,000 करोड़ इसका वैल्यू है और एक्सेस या दूसरा कोई भी फंड जिसका जो है वैल्यू तकरीबन 8,000 करोड़ या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या उसमें ज्यादा फायदा हो सकता है क्या? थैंक यू।
देखिए, केवल AUM, ये बात आप सही कह रहे हैं कि एक स्मॉल कैप फंड के लिए बढ़ता AUM थोड़ा सा एक खतरे का संदेश होता है और एक थोड़ा सा जो फंड मैनेजर है उनके लिए चुनौती हो जाती है, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फंड्स मैनेज करना। लेकिन अगर हम देखें तो अभी तक बहुत क्लियर इंडिकेशंस या फिर कहीं से भी ऐसा नहीं है जिससे कि बहुत ही एक साइंटिफिक तरीके में कहा जा सके कि एक श्योर शॉट रीज़न हो सकता है बढ़ते हुए AUM का कि उस फंड की परफॉर्मेंस खराब होगी होगी। हमारे पास कैटेगरी में स्मॉल कैप फंड्स ऐसे भी है जिनका AUM 50,000 करोड़ 70,000 करोड़ से ज्यादा है लेकिन तब भी उनकी परफॉर्मेंस ठीक है। तो केवल AUM बढ़ने के वजह से एक ये रीज़न नहीं होना चाहिए कि आपको दूसरे फंड में जाए, क्योंकि इसकी DSP स्मॉल कैप की मैं परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, अभी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो जब तक परफॉर्मेंस सही है आपको उस वजह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, वहीं पर अगर एक जो स्मॉल कैप है आपके पोर्टफोलियो का अच्छा खासा पैसा इसमें लगा है तो आपको डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर करनी चाहिए। इवन जो आपका स्मॉल कैप एलोकेशन है वहाँ पर आप स्मॉल कैप कैटेगरी से कोई एक और दूसरा फंड DSP के साथ में जोड़ सकते हैं एक थोड़े से प्रपोर्शन में, जिससे कि आपका स्मॉल कैप एलोकेशन का जो सारा पैसा है वो केवल और केवल सिर्फ एक ही फंड पर निर्भर ना रहे। बट ध्यान रखिएगा, दो बहुत है, दो से ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि वो बिना बात की डाइवर्सिफिकेशन से फिर आगे थोड़ा सा और दिक्कतें होती है।
सो डाइवर्सिफिकेशन विद डिसिप्लिन, इफ वी कैन कॉल इट।
या डेफिनेटली।
लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम कर्नाटका। वीरेंद्र जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
Good evening, Market Mantra team.
Good evening.
Sir, I am investing through SIP into 3,000 each into 6 mutual funds, namely ICICI Equity and Debt, HDFC Balanced Advantage Fund, Bandhan Small Cap, ICICI Corporate Bond, Parag Parikh Flexi Cap and LDS Mid Cap. Is it too many funds for 18,000 monthly SIP? If I have to reduce, which one? Thank you.
I would say though you have, 6 funds in your portfolio, you have a fairly diversified mix. You have an aggressive hybrid fund, you have a balanced advantage, then you have a flexi cap fund, and also you have a corporate debt funds to bring in the asset class diversification. So I feel no, I mean, it would not be right to say that you are invested into too many funds. The only thing to, look over here is that the money that you are investing is as per your goal horizon. Generally, the aggressive hybrid fund or the balanced advantage fund, the hybrid category, is meant for your goals which are like 5 to 7 years away, not more than that. And because the SIP amount 3,000 is equally divided into each fund, so you just need to see that for the goals which are like very very far away, like your retirement or something of that sort, maybe children's education, which is like 8-10 years away. For that, the FlexiCap fund is usually the best option, and even the aggressive hybrid can do that. But for the bond fund, I would like to specifically say that this money is meant for your short-term goals, and this money is basically something that you probably may need over the next 2 to 4 years, 2 to 3 years.
आकार इनके श्रोता के सवाल से एक सवाल मेरे मन में भी आता है कि अगर मान ले हम कोई 10,000 रुपये SIP के ज़रिए लंबे समय के लिए निवेश करना चाहता है तो आइडियली एक ऐसे निवेशक को जो कम जोखिम लेना चाहता है और 5 साल के लिए कम से कम निवेश करना चाहता है तो उसको अपने 10,000 रुपये को किन किन फंड्स में किस किस तरह के फंड्स में डालना चाहिए, कितना कितना?
देखिए, मेरी समझ में अगर कम जोखिम लेना है और बहुत ज़्यादा निवेश का एक्सपीरियंस नहीं है और 5 साल का समय है तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड ठीक रहेंगे. उसके लिए 2 फंड्स में बांट दीजिए, 5,000-5,000 की SIP 2 अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में, ये ठीक रहेगा. इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसमें एक आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा और एक इक्विटी प्लस डेट का एलोकेशन भी मिल जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 70-30 का एलोकेशन होएगा. और क्योंकि समय 5 साल है तो अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी आएगी तो इसमें आपको एक स्टेबिलिटी भी मिलेगी. वहीं एक मैं चीज़ ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि अगर वो जो गोल है वो काफ़ी नॉन नेगोशिएबल है, जैसे कि लाइक आपको पैसे 5 साल के एकदम ही अंदर चाहिए या फिर हल्का सा भी उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहते कि एकदम बच्चे का कॉलेज का एडमिशन है या कुछ है, तो आप कुछ 20-30% 10,000 का एक डेट फंड में भी निवेश कर सकते हैं या फिर एक बैंक में केवल RD डाल के भी थोड़ा सा लिक्विडिटी रख सकते हैं
जी. और अब अगली खबर पे नज़र डालते हैं सरबजीत, देखें सोने और चांदी का क्या हाल रहा. पिछले हफ्ते सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों पर लगातार दबाव बना रहा. अमेरिका में मुद्रास्फीति के आंकड़ों और यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा ब्याज दरों में बढ़त के फैसलों से कीमती धातुओं पर दबाव बना रहा, लेकिन सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट द्वारा ईरान पर हवाई हमले रोकने की खबर से सर्राफा में मजबूती आई. अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की संभावना से भी थोड़ी तेज़ी दिखाई दी, लेकिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन की तेज़ी भी सोने और चांदी की कीमतों को साप्ताहिक गिरावट से नहीं बचा पाई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध के लिए सोना वायदा पिछले सप्ताह 3.2% गिरकर 1,50,528 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. जुलाई अनुबंध के लिए चांदी वायदा में लगभग 1% की गिरावट रही और ये इस हफ्ते 2,46,186 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. अगस्त वायदा का कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स 2.9% गिरकर $4,239 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ, जबकि जुलाई वायदा की चांदी 1.6% गिरकर $67.97 प्रति ट्रॉय आउंस पर आ गई.
Now let's go to Jaipur, from where our next caller is trying to reach us. Jitender ji, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
हाँ सर, ये पूछा था कि वैल्यू फंड और फोकस फंड कोर फंड में रहना चाहिए कि नहीं?
जी देखिए, जो फोकस्ड फंड है और वैल्यू फंड है, दोनों में पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं. फोकस्ड फंड के ऊपर एक मैंडेट होता है कि वो फंड सिर्फ और सिर्फ 30 स्टॉक्स में निवेश कर सकता है. उसका जो पोर्टफोलियो है उसमें 30 से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं हो सकते. बट ये जो 30 स्टॉक्स है, जो पोर्टफोलियो है, इसका जो एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो कुछ भी हो सकता है. वो लार्ज कैप भी हो सकता है, मिड कैप भी हो सकता है. और ये जनरली स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में फंड के मेंशन रहता है. वहीं पे जो एक वैल्यू फंड है उसमें ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं होती कि उसको जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो विद इन 30 रखने, और इनफैक्ट वो एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल लेते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो उन स्टॉक्स में निवेश करे जो कि मार्केट में अभी अंडर वैल्यूड है, जिसको हम लोग कहते हैं कि सस्ते मिल रहे हैं, कि जो फंड मैनेजर है उसकी समझ में वो स्टॉक की कीमत उस जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे कहीं ज़्यादा है, और आने वाले समय में उसको लगता है कि उसकी कीमत मार्केट में बढ़ेगी और उससे फ़ायदा होएगा। बाकी रहा आपका सवाल कि इन दोनों फंड्स में निवेश करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप निवेश। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो फोकस्ड फंड्स होते हैं, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होते हैं, तो वो एक कॉन्सेंट्रेटेड।
It's the logistics and it's the precedent. The cost of moving the shuttle, as you noted, would be in excess of $85 million, what you noted that they allocated. NASA, the Smithsonian, they've provided estimates that the moving costs alone would be about double that number. And of course, then there's the cost of a new facility in Houston to house a shuttle. There's the logistics, which is an even larger challenge than that. The fact of the matter is that the shuttles are enormous, they're very fragile, and any process to move Discovery to Houston would be likely irreparably damaging the shuttle. But then I think perhaps most important is the precedent. Discovery is part of the national collection at the Smithsonian. And if Discovery were to be taken from that, we would set a very terrible precedent that anything in the Smithsonian's collection, which is there for all Americans, is on display for really the world to see. But we'd be setting that precedent that anything could be taken from the collection, moved to another state, just because one or two elected officials want to see that happen.
Let me press you just a little bit more on that. If you think about the Johnson Space Center in Houston, it plays a historic, even mythical role in the space program, the story of the space shuttle. And beyond mission control, it's where astronauts are trained at the center there. Recognizing the cost, logistics, setting that aside for a moment, why shouldn't it be in Texas?
There's certainly no debate that Houston and Texas's contribution to the space program has been immense. I would be the first to admit that. But what I think is important to keep in mind is NASA ran a very thorough allocation process about 15 years ago when the shuttle program was winding down, and they found that the most appropriate locations for the orbiters were at the Smithsonian, which had always been slated to receive one, in Florida, in California, and at the Intrepid Museum in New York. But they had a rubric, they had a process that they went through, and at the end of the day, Houston unfortunately didn't make the cut.
So this fight's been going on for years. The two Texas senators I mentioned, of course, are John Cornyn and Ted Cruz, both Republicans who got that money set aside. They say the Obama administration, led by Democrats, were playing politics in preventing Houston from getting a shuttle. What do you make of that claim?
There's a couple things that come to mind there. One is that NASA's OIG ran a process shortly after the decisions were made. This was about 15 years ago. They ran a process. They interviewed everyone involved.
When you say a process, is that an investigation?
An investigation, that's correct.
I see. Uh-huh.
So they ran a full investigation, issued a report where they found that there had been no political pressure, there had been no personal favors or the like. And in fact, that's the report where it came out that NASA's administrator, Charles Bolden, at the time, he would have preferred to have sent a shuttle to Houston, but he was committed to following the process. But then there's also the fact that, you know, it's been 15 years now, and there's been no further evidence to support that claim that there was any political maneuvering going on in the background.
All right, so you started Keep the Shuttle to try to prevent that move down to Texas. Why did Joe Stief start this campaign?
So I grew up in the D.C. area, a huge space nerd, like a lot of kids that grew up during the shuttle program. I took my parents, dragged my parents perhaps, down to the Air and Space Museum as much as I could as a kid. And while I didn't end up working for NASA or in aerospace, it's always been a lifetime passion, to the point that my wife and I actually had our wedding at Udvar-Hazy. We got married at Discovery's nose, and then we had the reception in the back by the engines. And
no
so
kidding.
We did. And so I certainly recognize that I had a little bit of a unique story and that that might give me a little bit of an edge in getting the ball rolling here. But I also knew that there were thousands, millions of folks that had a special connection to the shuttle program, that remembered it as a kid or seeing it fly as an adult, and in some cases even worked on the program.
One last question. If the shuttle were to be sent back, how would it be done safely?
I'm not sure there is a way to safely move the shuttle to Houston. So a lot of systems would be damaged if you had to cut the shuttle up into pieces. It's not something that any of the orbiters were ever designed for. But then, since there are no longer specially modified 747s NASA used during...
And when it comes to the mutual funds, for specifically for the investors, definitely that is a safe place because, you know, over there we have professional fund managers managing your money. And, you know, because a normal retail investor might, you know, panic or, you know, take a wrong decision, like which stock to sell in such a situation, like when the markets has gone down by like 11% in the last 6 months. But over there we have experienced professional fund managers who may not panic that way and, you know, would take a definitely right step for you.
So you just said that the growth story is still intact.
Yep.
So, you know, this said, what is your piece of advice for young investors who are to start their journey of investment?
One would be just start. Don't wait. Don't try to wait for the right time, or don't think that, you know, probably you will start investing once everything settles down, because, you know, you will be losing on time. And for the young investors, the biggest advantage is the time, because, you know, it helps you gain on the advantage of compounding. At the same time, I would like to, you know, tell them to be cautious, that don't enter the market from the perspective of getting, you know, quick money, or thinking that, you know, markets will bounce back in some time and I'll, you know, make good amount of money in very short time. Don't enter the market from that mindset. Just enter the market from the long-term perspective, but start now, or don't lose the time.
ये चेतावनी तो हमेशा के लिए है, हर समय के लिए है, अभी की हालत में नहीं, बल्कि कभी भी आप जल्दी से पैसे बनाने के लिए म्यूचुअल फंड में तो ना आए.
बिल्कुल.
So indeed, patience is the buzzword here.
जी.
Let's take a look at the markets, how they are expected to show up next week. In the upcoming week, domestic markets are expected to take direction from a series of high impact global events and key domestic economic data releases. Investors will closely track the US Federal Reserve's policy meeting outcomes, the Bank of Japan's interest rate decision, developments around a potential US-Iran peace agreement, and movements in crude oil prices. Market participants will also watch India's wholesale inflation data for May, along with other key macro indicators, including employment figures, import-export data, and the country's foreign exchange reserves.
Sir Abhijit, ये आने वाले दिनों में लग रहा है कि अब कुछ सकारात्मक हमें भी देखने को मिलेगा बाजार के हिसाब से अगर हम देखते हैं, निवेशकों के हिसाब से अगर हम देखें तो संभावनाएं अभी तो काफी हैं और बाजार उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे. आकार, आज वक्त इतना ही है. कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए, बहुत सार्थक चर्चा करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.
जी, धन्यवाद.
Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron inaugurate Bharat Innovates event in France. Mr. Modi calls it an invitation to co-create the next chapter of global innovation with India. In bullion market, gold and silver prices declined last week, and domestic investors to focus on macroeconomic data, geopolitical developments, and US Federal Reserve's meeting for Q's next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.